समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।
नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। हमारा आज का विषय है टीबी मुक्त भारत अभियान। देश को टीबी मुक्त करने के लिए 7 दिसंबर 2024 को 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य टीबी के मामलों का पता लगाने, निदान में होने वाली देरी को कम करने और उपचार के परिणामों को बेहतर बनाते हुए टीबी के खिलाफ लड़ाई को तेज करना है। टीबी यानी तपेदिक को जड़ से खत्म करने के प्रति भारत का दृष्टिकोण केवल राष्ट्रीय प्रयास भर नहीं है, ये वैश्विक लक्ष्यों के साथ भी संबद्ध है। भारत टीबी को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों की 2030 की समय सीमा से 5 साल पहले ही 2025 तक खत्म करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संक्रामक रोग के लक्षण, कारण, निदान, सावधानी और सरकार के प्रयासों पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में टीबी प्रोग्राम की उपमहानिदेशक प्रोफेसर उर्वशी बी सिंह। आपका स्वागत है उर्वशी जी स्टूडियो में।
नमस्कार, धन्यवाद।
श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। नंबर है 2331-4444 और 2342-1050। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना न भूलें। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेजे जा सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। कार्यक्रम की शुरुआत में उर्वशी जी, हम ये जानना चाहेंगे कि टीबी के मुख्य लक्षण क्या हैं, ये क्यों होता है और कैसे पता चलता है कि व्यक्ति को टीबी है।
जी देखिए, टीबी एक हवा से फैलने वाली बीमारी है। जैसे कि कोविड के समय में सभी को समझ आ गया था कि अगर कोविड व्यक्ति के निकट में रहेंगे तो ड्रॉपलेट्स के द्वारा यह बीमारी दूसरे व्यक्ति को फैल सकती है, तो टीबी भी हवा से फैलने वाली बीमारी है जिसमें बोलते, खांसते, छींकते समय जो हमारे मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, उन ड्रॉपलेट के द्वारा ये बीमारी फैलती है। और ये ड्रॉपलेट्स सूख कर जो छोटे कण बन जाते हैं उससे भी ये बीमारी फैलती है। सो अगर कोई एक क्लोज रूम है, जैसे घर के मेंबर्स जो हैं वो भी एक्सपोज होंगे और वर्क प्लेस पे भी ये एक्सपोजर हो सकता है। तो ये हवा से फैलने वाली बीमारी है जिससे कोई भी ग्रसित हो सकता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। कुछ लोगों में इस बीमारी के होने के चांसेस ज्यादा हैं, जैसे कि कुछ वल्नरेबल पॉपुलेशन जो हमारे नेशनल प्रेवलेंस सर्वे में हाईलाइट हुआ, उनमें टीबी के चांसेस ज्यादा हैं, जैसे किसी जिसको डायबिटीज हो, जिसको HIV हो, या जो स्मोकिंग या अल्कोहलिज्म करते हो, जो अल्कोहल का सेवन, शराब का सेवन करते हो। ऐसे मरीज जिन्हें पास्ट में टीबी हुआ है उन्हें रेकरेंस कभी कभी हो सकता है, बहुत छोटे प्रतिशत में, बट ये एक हाई रिस्क ग्रुप हम मानते हैं और इनमें हम फॉलो अप और स्क्रीनिंग करना चाहते हैं। वे लोग जो 60 साल से बड़ी उम्र के हैं और वे लोग जिनका BMI 18.5 से कम है, ऐसे लोगों में टीबी होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो ऐसे लोगों में हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि एनुअली एक बार स्क्रीनिंग करा लें एक्सरे से। एक्सरे में कुछ आता है तो हम लैब टेस्ट है, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, जैसा टेस्ट कोविड के समय में यूज किया गया, उस टेस्ट से हम कॉन्फर्मेशन कर लेते हैं।
लक्षण क्या है इसके?
सो लक्षण में देखिए, पुराने समय में कहा जाता था कि 2 हफ्ते की खांसी। अब जो नई साइंस आई है उसमें जो सामने आया है कि कितनी बार, खासकर जो हाई रिस्क ग्रुप्स मैंने आपसे अभी शेयर किए, उनमें बिना किसी सिम्टम के भी टीबी रह सकता है, एकदम शांत रहेगा और मरीज को पता भी नहीं चलेगा कि उसको टीबी है और वो फिर सडनली प्रोग्रेस करेगा डिजीज में, मतलब सडनली सीवियर डिजीज हो जाएगा। तो ये इसका जो स्पेक्ट्रम है जो लक्षण का, वो कुछ भी लक्षण ना हो या फिर इनमें से कोई लक्षण हो। मैं आपको 10 लक्षण गिनाती हूँ। पहले सिर्फ 4 लक्षणों की बात होती थी, अब हम 10 लक्षणों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि टीबी सिर्फ फेफड़ों की टीबी नहीं होती। अगर फेफड़ों की टीबी समय पर डायग्नोज नहीं करी जाए तो वह शरीर के किसी भी अंग को ग्रसित कर सकती है। तो इसलिए आइडियल ये है, जो सबसे ठीक रहेगा, जितना जल्दी हम टीबी के लक्षणों की पहचान करें और टीबी का डायग्नोसिस करें जितना जल्द हो सके। तो लक्षणों में आपको बता दें, हल्का बुखार, बहुत तेज बुखार नहीं आएगा, जैसा किसी टाइफॉइड में या डेंगू में आता है, बहुत तेज बुखार नहीं आएगा, हल्का बुखार। शाम के समय बुखार का बढ़ना, वजन गिरना, भूख ना लगना, रात को पसीना आना, हल्का छाती में दर्द रह सकता है, बलगम वाली खांसी, खांसी के साथ कभी ब्लड आ सकता है, हिमोप्टिसिस बोलते हैं हम उसे, लिम्फ नोड हो जाते हैं, जैसे नेक में कोई ग्रोथ किसी ने देखी, नेक में ग्रोथ दिख रही है या लिम्फ नोड बढ़ गया साइज में, या शरीर में जैसे फॉर एग्जांपल अगर पेट की टीबी है तो पानी भर जाएगा पेट में, या फेफड़ों के में पानी भर सकता है, तो चेस्ट में प्लूरल इफ्यूजन हम बोलते हैं उसको, जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे मैंने कहा कोई भी अंग इन्वॉल्व हो सकता है। तो फेफड़ों की टीबी शुरुआत में, जैसे सांस से हमने इनहेल किया टीबी का बैक्टीरिया, पहले फेफड़े इन्वॉल्व होंगे, और अगर उस समय डायग्नोज नहीं हुआ या उस समय उसको इग्नोर किया गया तो वो शरीर का कोई भी अंग इन्वॉल्व हो सकता है। और अगर हमने शुरू में इस डिजीज को इग्नोर किया तो एमडीआर टीबी भी बदल सकता है।
हमारे एक श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनिल, इंदौर मध्य प्रदेश से। अनिल जी, क्या पूछना चाहते हैं आप?
हमारा सवाल यह है कि ये जैसे हम टीबी की जो बीमारी है थी, ये अधिकतर देखा है कि ठंड के दिन में लोगों को सर्दी खांसी बहुत होती है, तो यह मौसम के साथ इसका संबंध होता है या किसी भी मौसम में यह बीमारी होती है, और एक बार अगर हो जाए तो इसका ऐसा है कि दूसरी बार नहीं होगी, क्या यह कभी भी कितनी बार भी हो सकती है?
जी अनिल जी, आपका प्रश्न जो था, ये ऐसा नहीं है कि सर्दी के मौसम में हो सकती है, ये किसी भी समय हो सकती है। तो जो खांसी जुकाम को इग्नोर किया कर दिया जाता है सोच कर कि वायरल से होगा, वैसा कुछ नहीं करना। अगर आपको जो लक्षण हमने गिनाए उनमें से कोई भी लक्षण किसी को भी हो तो अपनी जांच करा लें। और इस समय हम आपको ये भी बता दें कि हमारा जो गवर्नमेंट का जो टेस्टिंग नेटवर्क है वो इतना स्ट्रांग है कि जो कोई भी और कंट्री बोस्ट नहीं कर सकती। हमारे जो न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट जैसी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हमारी कंट्री में 8,293 से ज्यादा मशीनें हैं जो गवर्नमेंट सिस्टम में है, इसके एडिशन में पब्लिक सेक्टर में भी होंगी। तो इतना स्ट्रांग डायग्नोस्टिक सिस्टम है, एक्सरेज हमारी कंट्री में कंट्री वाइड बहुत बढ़िया नेटवर्क है, इन एडिशन अब हम हैंडल्ड एक्सरे भी सब जगह पहुंचा रहे हैं, ताकि जो हाई रिस्क पॉपुलेशन को एक्सरे से स्क्रीन किया जा सके, और डिजीज अगर एक्सरे में कुछ एबनॉर्मैलिटी दिखती है तो उसको हम न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट से कंफर्मेशन कर लेते हैं। सो ये सारा डायग्नोसिस फ्री है, हर एक के लिए सब कुछ निशुल्क है। उसके बाद ट्रीटमेंट जो दिया जाता है वो 6 महीने का ट्रीटमेंट है, ड्रग सेंसिटिव टीबी के लिए भी और ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए भी। अभी हमने नया लॉन्च किया है बीपाल एप, जो फ्री ट्रीटमेंट गवर्नमेंट दे रही है। इसके साथ हम जो न्यूट्रिशन पे बहुत महत्व, बहुत आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि परिवार के लिए और मरीज के लिए सही पोषण, प्रोटीन रिच डाइट लेना बहुत जरूरी है, ताकि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो इस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए। सिर्फ दवा से इलाज तो हो जाएगा, पर जो उसका पोषण आप बढ़ाएंगे मरीज का, तो वो इलाज जल्दी और ठीक रहता है। आपने रिकरेंस की, सॉरी, उन्होंने रिकरेंस की बात भी पूछी थी कि वो रिपीट दोबारा हो सकता है, तो देखिए कंप्लीट जो मरीज पूरा इलाज करेगा उसमें रिकरेंस के चांसेस बहुत थोड़े रह जाते हैं। तो इसलिए इलाज पूरा करना है, ये नहीं कि महीना भर दवा खाई, आज आपको अच्छा लगने लगा, आपने दवा छोड़ दी। ऐसे में एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, फेफड़ों के अलावा दूसरे अंगों में टीबी या एमडीआर टीबी के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसका इलाज थोड़ा कठिन है और लंबा चल सकता है कभी। सो
नांगलोई दिल्ली से जगदीश जोशी हैं अब हमारे साथ। जगदीश जी।
हाँ जी मैम, नमस्कार।
नमस्कार।
और ये जो एक्सपर्ट मैम है, इनको नमस्कार।
नमस्कार जी।
तो पहले तो मैं बता दूं, मैं आपका रेगुलर लिसनर हूं और फोन में कई बार इसलिए नहीं करता क्योंकि दूसरे लिसनर कोई क्वेश्चन करते तो मुझे अपना जवाब मिल जाता, तो इसलिए मैं फिर मतलब और लिसनर ज्यादा से ज्यादा आपसे जुड़ पाए तो मैं फिर करता नहीं, क्योंकि मेरा बगैर पूछे कई बार मेरा आंसर मिल जाता है
जी।
तो हाँ, तो दूसरी बात यह है कि जो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहे, बोन टीवी क्या होती है, ये कैसे मतलब हो जाती है और क्या इसके लिए बाद में अगर हो गया तो क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, और ये भी क्या जैसे घर परिवार में किसी को हड्डी वाला टीवी हो गया तो ये भी क्या एक से दूसरे को फैल सकता है या नहीं, इसके बारे में मैं डॉक्टर साहब से उनकी सलाह लेना चाहूंगा
जी। तो जोशी जी, ऐसा है कि टीबी शुरुआत हमेशा फेफड़ों से होती है और फेफड़ों से शरीर के बाकी अंगों में फैलती है, तो फेफड़ों की टीबी को जल्दी डायग्नोस करना बड़ा जरूरी है। अब जिस मरीज को अगर बोन की टीबी हो गई उसका पूरा इलाज हमारे पास है और अगर वो इलाज पूरा करेगा, कभी कभी बोन टीबी में ये इंश्योर करने के लिए कि कंप्लीट क्योर हो जाए, कि कंप्लीटली ठीक हो जाए मरीज, तो थोड़ी ज्यादा समय तक भी दवा देनी पड़ सकती है, साल डेढ़ साल दो साल जो आपके डॉक्टर निर्धारित करेंगे। ऐसे मरीज से जिसको सिर्फ बोन की टीबी है दूसरे को टीबी नहीं फैलती। पर देखिए, इससे मेरा ये जो आपका जो प्रश्न था उससे मैं बाकी लिसनर्स को ये भी बताना चाहूंगी कि देखिए, टीबी जैसे मैंने कहा कि कोई भी नहीं बच सकता, अमीर या गरीब, तो इसके लिए जो सोसाइटी में जो एक स्टिग्मा बना हुआ है ना कि टीबी का मरीज हो गया तो अछूत कर दिया जाए, वो सबसे गलत धारणा है। उससे हम सबको मिलके जूझना है कि इस टीबी से कोई स्टिग्मा ना, मतलब मरीज को आपके सहारे की जरूरत है तो उन्हें डायग्नोसिस पे ले जाएं, उन्हें ट्रीटमेंट कराएं, उन्हें पोषण का सपोर्ट दें, उन्हें अगर कोई पैसे की कमी है, मतलब कुछ लोग तो कहते हैं कि नौकरी से निकाल दिया, इससे बेहतर है उन्हें छुट्टी दें, उन्हें सपोर्ट करें ताकि उनका इलाज होए और वो वापस अपना जो है जीवन अच्छी तरीके से जी पाए। सो बोन टीबी से कोई घबराने की बात नहीं है, जरूरी ये है कि उसका डायग्नोसिस जल्दी होना चाहिए। तो इसी मरीज को जिसको बोन टीबी है, उसने समय पे अगर उसके लक्षण उसने पहचान कर, फेफड़े की जब टीबी थी तभी उसने डायग्नोसिस करा लिया होता है, तभी ट्रीटमेंट करा लिया होता, तो बात बिगड़ के बोन टीबी तक नहीं पहुंचती।
हमारे अगले श्रोता हैं मोहन पासवान
जी, सर
दरभंगा, दरभंगा बिहार से जी। पासवान जी, आप बोल रहे हैं
जी? मैडम इकट्ठे प्रणाम।
प्रणाम, बताइए
मैडम। सत्यापित टीबी मरीज होने से पहले मानव अभिभावक बचपन से ही किस प्रकार के रहन सहन खान पान पर ध्यान दें जिससे भविष्य में चलकर जवान बच्चे बूढ़े को टीबी रोग न हो सके एवं भारत टीबी मुक्त बन सके सर? दूसरा है कि टीबी रोग होने से मुक्त भारत बनाने का सूत्र क्या होना चाहिए? राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय स्तरीय नेता एवं सामाजिक लोगों को सर, जिससे टीबी मुक्त भारत बन सके। तीसरा है कि सर, भारत देश कृषि प्रधान देश है, जिन किसान मजदूरों का आर्थिक स्थिति कमजोर हो उन्हें क्या करना चाहिए टीबी जैसे घातक बीमारी से बचने के लिए सर?
जी, तो आपका प्रश्न बहुत ही सही था। तो सबसे पहला कि आपने पोषण की बात उठाई, तो हमने पहले भी कहा कि पोषण का इसमें बहुत मेजर रोल है। जिस तो ये देखा गया, ये पाया गया है हिंदुस्तान की ही रिसर्च में कि जो हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स हैं टीबी मरीज के, अगर वे कुपोषित हैं तो उन्हें टीबी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जो आपका पहला प्रश्न था कि पोषण का क्या महत्व है, तो पोषण का सबसे ज्यादा महत्व है टीबी से बचने के लिए। यहां तक मैं कहूंगी कि टीबी की जब तक वैक्सीन का इजाद नहीं हो जाता तो आपका जो पोषण है वही टीबी से आपको बचाएगा। तो पोषण में ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत महंगी चीजें खानी है या बहुत ही एग्जॉटिक चीजें खानी है, प्रोटीन रिच डाइट खानी है। तो प्रोटीन हमारे जो शाकाहारी हैं वो दाल में या दूध की चीजों में, वो उसमें शाकाहारी लोग आराम से खा सकते हैं, और जो मांसाहारी हैं वे तो अपना अंडा मीट वगैरह से भी उनका प्रोटीन का रिच डाइट चली जाएगी। तो कुपोषित लोगों में, मैंने आपको पहले भी हाई रिस्क ग्रुप में बताया कि कुपोषित लोग जो हैं उनमें भी टीबी के चांसेस ज्यादा होते हैं। तीसरी बात, जो टीबी का मरीज है उसके लिए भी डाइट बहुत जरूरी है। उसे टीबी की वजह से ही एनोरेक्सिया मतलब कम भूख लगने लगती है, तो वो अपना खान पीन नहीं खा पाते। तो ऐसे मरीजों में भी परिवार वाले या उसके सहयोगी, उसके दोस्त उसको एनकरेज करें कि न्यूट्रिशन लेना जरूरी है। और जैसा हम कहते हैं कि प्रोटीन और कैलोरी दोनों ही लेना है, तो कैलोरी रिच फूड लेना है और प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। सिर्फ इतना ध्यान दिया जाए तो मरीज की रिकवरी जल्दी हो जाती है, और मरीज के कॉन्टैक्ट्स में या हाई रिस्क ग्रुप्स में भी न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया जाए। तो जो गवर्नमेंट है वो निक्षय पोषण योजना 2018 से चला रही है, जिसमें टीबी के मरीज को 500 रुपए प्रति माह दिया जाता था। 1 नवंबर 2024 से यह जो अमाउंट है डबल कर दिया गया है, तो 1000 रुपीस पर मंथ दिया जा रहा है थ्रू आउट द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट टू ऑल पेशेंट्स। इन एडिशन जो BMI कम वाले मरीज हैं, 18.5 से जिनका कम BMI है, उन मरीजों में हम एनर्जी डेंस न्यूट्रिशन सपोर्ट भी दे रहे हैं। और तीसरा जो निक्षय मित्रा इनिशिएटिव, अगेन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव था, और ये हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने लॉन्च किया था, जिसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत फूड बास्केट्स दी जाती हैं मरीज के परिवार को, ताकि मरीज भी हेल्दी रहे और मरीज का परिवार भी हेल्दी रहे। एक आपने प्रश्न पूछा कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का क्या रोल है, तो आपने अभी देखा ही होगा कि हमारे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर सर ने पहले चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग ली, MPs के साथ मीटिंग ली, और अभी रिसेंट एक हफ्ता पहले उन्होंने मिनिस्टर्स ऑफ अदर लाइन मिनिस्ट्रीज के साथ मीटिंग ली टू एनकरेज सभी जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे हैं अपने अपने फील्ड में, अपने अपने एरियाज में। ऑल MPs, MLAs और बाकी मतलब यहाँ तक कि पंचायती राज के भी जो प्रमुख हैं, वो लोग भी सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब तरफ से ये होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच चल रही है। हम सबको जागरूक करना चाह रहे हैं कि सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए।
हमारे साथ हैं अब NP सिंह दिल्ली से।
गुड इवनिंग टू द पैनलिस्ट।
गुड इवनिंग
मैम, मेरे दो क्वेश्चन थे। आई हैव अ वर्कशॉप, हमारी वर्कशॉप है, उसमें कुछ जो कारीगर थे उनको टीबी हो गई, एंड दे वर ब्रदर्स, तो एक एक करके वो सारे गुजर गए और उनको सांस की टीबी थी। जो अब एक आगे आगे प्रिकॉशन रखने के लिए, एक तो ये बताइए कि इन्फेक्शियस होती है सांस वाली, और उसका उनका जो वर्कर है वो अगर काम नहीं करेगा तो घर में कुछ लेके नहीं जाएगा, तो भी वो एक तरह से वो नहीं रुक सकते।
बिल्कुल,
तो उनको कैसे, उनका अगर वो काम भी करना है और अगर दवाई भी लेनी है, तो उनको कैसे अलग अलग करें और अपना ध्यान कैसे रख सके। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जो लेडीज में फैलोपियन ट्यूब के अंदर कहते हैं कि टीबी का चांस बन गया है, तो ये मैं नहीं समझ पा रहा कि भाई ये जो बॉडी के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स में टीबी जाती है वो क्या होती है, और सांस की टीबी क्या होती है, और ऑल आर सेम काइंड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस, और इट हैज सम जर्म्स। मेरे को ये अभी तक टीबी को डिफाइन नहीं कर पाए, लोगों को ये पता नहीं।
देखिए बड़ा सिंपल है, बीमारी आएगी तो लंग्स से ही, और पहले लंग्स को इन्वॉल्व करेगी। पर जैसा मैंने पहले आपको बताया, इसके सिम्टम्स बड़े सीवियर नहीं होते, मतलब तेज बुखार नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि मरीज सडनली बिस्तर पे पड़ जाए। वो हल्के हल्के सिम्टम्स रहते हैं, शाम को बुखार हुआ, हल्का बुखार हुआ, लोग सोचेंगे थकावट से हुआ, थोड़ा थोड़ा वजन धीरे धीरे गिरेगा और लोग सोचेंगे मैं खाना ठीक से नहीं खा रहे हूं, मैं ठीक से नहीं खाना पीना नहीं हो रहा इसलिए वजन गिर रहा है, भूख नहीं लगेगी तो कोई और रीजन एस्क्राइब कर देंगे। तो बेसिकली क्या होता है, अपने सिम्टम्स को नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे नेशनल प्रेवलेंस सर्वे में भी ये पाया गया कि हमारा कंट्री में हेल्थ सीकिंग बिहेवियर बहुत पुअर है। सो चाहे वर्क प्रेशर से आप मान लें, या उसको सिम्टम्स को एस्क्राइब कर दिया जाता है वायरल इलनेसेस को, या ये भी हो सकता है कि कोई स्टिग्मा से डर के कि हमें टीबी हो गया तो आसपास वाले क्या सोचेंगे, या हमारे परिवार से मिलना जुलना बंद कर देंगे, इसकी वजह से भी लोग सामने ना आने से कतराते ना हो। तो ये हमारी सबकी ड्यूटी है कि इन सब मरीजों को इतना सपोर्ट सिस्टम तो हम ऑफर करें कि दुख आज उन्हें हुआ कल को हमें हो सकता है। तो सिस्टम गवर्नमेंट ने तो बहुत स्ट्रांग कर दिया, अब ये जन भागीदारी है कि जन भागीदारी में सब लोग कैसे टीबी के कॉज को सपोर्ट करेंगे। तो आपने ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का आह्वान भी सुना होगा, जन भागीदारी की तरफ सब इसमें हाथ बटाएंगे तो जरूर हम टीबी कंट्रोल कर पाएंगे। अब आपका जो दूसरा प्रश्न था कि फेफड़ों की टीबी है, वो हवा से ही हुई और हवा से ही दूसरों को फैल सकती है। सकती है, और वो समय पर डायग्नोज अगर नहीं होती है तब वो बीमारी शरीर के दूसरे अंगों में जा सकती है। तो उसमें भी घबराने की बात नहीं है, इसका पूर्ण इलाज संभव है, संपूर्ण इलाज संभव है। डायग्नोसिस भी प्रोग्राम गवर्नमेंट दे रही है, ट्रीटमेंट कंप्लीट गवर्नमेंट दे रही है, निक्षेप पोषण भी गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट कर रही है। तो इसमें किसी को भी घबरा के घर में ही नहीं बैठना है, कोई भी सिम्टम हो सामने आना है, हेल्थ फैसिलिटी में जाना है, हेल्प लेनी है। हमारा जो अभी 100 दिन का अभियान जो शुरू में मैडम ने इंट्रोड्यूस किया, उसमें हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हम मरीज के पास जाना चाह रहे हैं, हम सारे ऐसे ग्रुप्स को स्क्रीन कर रहे हैं एक्सरे से, जिन्हें हमने शुरू में गिनवाया, शुरू में जब मैंने बोले जो जिन वर्गों में टीबी के चांसेस ज़्यादा हैं, और ऐसे लोग जिनमें सिम्टम्स हैं हम उनको एक्सरे की स्क्रीनिंग ऑफर कर रहे हैं। जो एक्सरे में पॉजिटिव आती है, एबनॉर्मल आती है फेफड़ों के एक्सरे में, उनका हम नेट से टेस्ट करते हैं। तो ये हमारी तरफ से पूरी कोशिश जारी है कि हम मरीज तक पहुंचे। अब हम मरीज को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे तक पहुंचे, तो ये गैप कहीं पे ना रहे, हम सारे मरीजों को डायग्नोस करें और ट्रीट करें। जी,
अगले श्रोता हैं धर्मवीर दिल्ली से। धर्मवीर जी क्या जानते
हैं? जी नमस्कार मैडम जी, मैं धर्मवीर गांधी दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर नमस्कार, डॉक्टर मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जेनेटिक की भी होती है कि किसी वंश में किसी के रही हो तो उसके बाद कितने वंश पीछे ये टीबी रही हो उनके, तो वो आने वाली जनरेशन के किसको हो सकती है?
और ये ऐसी वंश में चलने वाली बीमारी नहीं है, ये बस इन्फेक्शियस डिजीज है, एक बीमार से दूसरे व्यक्ति को फैलती है और इसका पूरा इलाज कंप्लीट इलाज हो जाता है। तो एक से दूसरे को चलने वाली बीमारी नहीं है, जीन्स के थ्रू फैलने वाली बीमारी नहीं है, यह इन्फेक्शन के थ्रू फैलने वाली बीमारी है।
जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम टीबी मुक्त भारत अभियान पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रही हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में टीबी प्रोग्राम की उपमहानिदेशक प्रोफेसर उर्वशी बी सिंह। उर्वशी जी, कोई खास उद्योग या कार्यस्थल जहां काम करने वाले लोगों को इस बीमारी के होने का खतरा ज्यादा होता हो?
जी, तो जैसा मैंने पहले कहा कि कुछ वर्गों में यह टीबी की संभावना ज्यादा है, ऐसे ही कुछ कार्यस्थल ऐसे हैं जहां ये टीबी के चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि उनका एक्सपोजर टू डस्ट है। फॉर एग्जांपल सिलिका इंडस्ट्री में या फाइबर्स जहां पे यूज होते हों, जैसे कारपेट बन रहा है या फैब्रिक बन रहा है, उन फाइबर्स की वजह से ऑलरेडी जो हमारे फेफड़ों में चांसेस ऑफ टीबी बढ़ जाते हैं। लेट मी नॉट गो इनटू द सो फिर जैसे माइनिंग एरियाज हो गए, अब ट्राइबल कम्युनिटीज जो थोड़ा हेल्थ सेंटर से दूर हैं वो अपना अप्रोच नहीं कर पाती, ऐसी कम्युनिटीज में भी टीबी ज्यादा पाया गया और कुपोषण की वजह से भी इनमें टीबी के चांसेस ज्यादा हैं।
तो किसी खास विटामिन की कमी से भी होता है ये?
नहीं, विटामिन की कमी से तो नहीं ऐसा पाया गया, बट जो हमने शुरू में कहा कुपोषण से ही है जो है ज्यादा हो सकता है। तो पोषण पे ध्यान देना सबका अपना, जैसे कहते ना मेरी सेहत मेरा दायित्व, मतलब हर इंसान अपनी सेहत का ध्यान रखे। लक्षण है सामने आए डॉक्टर से सलाह लें, मदद लें।
कुछ जो दवाइयां होती हैं क्या उनसे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं टीबी के?
देखिए ये ना मिसकंसेप्शन है, ऐसे साइड इफेक्ट्स इतने मेजर कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, बहुत छोटे प्रतिशत में अगर थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट हो तो हम जो दवा जिसकी वजह से साइड इफेक्ट हो रहा है हमारे पास ऑप्शन है उस दवा को बदल के दूसरी दवा देने का। तो इस डर के मारे कि साइड इफेक्ट हो जाएगा दवा ना लेना, इससे बड़ी गलती कोई नहीं है, और अगर साइड इफेक्ट हो तो दवा को छोड़ देना इससे भी बड़ी गलती कोई नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति इलाज बीच में छोड़ेगा उसकी टीबी कल को बहुत बुरी तरह बिगड़ सकती है और ड्रग रेजिडेंट टीबी बन सकती है, जैसे मैंने कहा, जिसको कभी कभी लंबा इलाज भी देना पड़ सकता है। तो अगर साइड इफेक्ट कभी उन्हें प्रतीत होता भी है तो वो डॉक्टर से जाके परामर्श जरूर करें, डॉक्टर अगर ठीक समझेंगे तो दवा बदल देंगे, पर खुद से दवा नहीं रोकनी है, बीच में ट्रीटमेंट नहीं रोकनी है।
छत्तीसगढ़ से हमारे एक संवाद श्रोता है इंद्रभान।
इंद्रभान जी, जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से, मैं इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
जी बोलिए
मैडम, ये बताइए टीवी की कितने स्टेज होती है और इस मतलब कि किस स्टेज में डॉक्टर को दिखाना चाहिए?
देखिए टीबी की स्टेज जैसी कोई चीज नहीं है, टीबी انفیکشن ہو سکتی ہے, جیسے کہ کوئی, جیسے میں نے کہا کہ ہوا سے کیٹاڑو شریر میں گیا, اور اگر آپ کا امیون ریسپانس اسٹرانگ ہے تو آپ اس کو انفیکشن کو اپنے آپ ہی وہ ٹھیک کر لے گا آپ کا شریر, کیونکہ آپ کا امیون ریسپانس اسٹرانگ ہے, آپ کو پوشت نہیں ہے, تو وہ انفیکشن اسٹیج پہ ختم ہو جائے گی بیماری. پر انفیکشن اسٹیج پہ آپ کو کوئی سمٹم بھی نہیں آتا, آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا آپ ہیلدی ہیں اور آپ کا انفیکشن ٹریٹ ہو گیا. اب رہی بات کہ یا آپ کو کپوشن ہے یا آپ کو کوئی کوموربیڈیٹی, ہم ورڈ یوز کرتے ہیں, جیسے ڈائبٹیز ہو گیا, ایچ آئی وی ہو گیا, جس میں وہ ڈیزیز پراپر اپنا پورا ڈیزیز کا فارم لے لیتا ہے, جس میں بیماری ٹی بی کی ہو جاتی ہے, اور اس میں آپ کو سارے یہ لکشن بھی آئیں گے جو میں نے پہلے بتائے. تو اسٹیج از ناٹ امپورٹنٹ, واٹ از امپورٹنٹ از جہاں, تو پہلی بات کہ جو ہمارے ہائی رسک گروپس ہیں, جو ولنریبل گروپس ہیں, انہیں اینولی اپنی اسکریننگ کرانی چاہیے بائی ایکس رے, وچ از نان ڈسٹنگ, ایکس رے جیسی چیز ہے جس میں آپ کی بیماری پکڑی جائے گی. یہ اینوئل اسکریننگ کرانی چاہیے ہائی رسک گروپس کو, اور وہ لوگ جنہیں کچھ بھی سمٹمس ہیں, جو ہم نے 10 سمٹمس گنائے, اس میں سے کچھ بھی سمٹم ہیں, انہیں بھی اپنا جا کے ایگزامینیشن اور اسکریننگ کرانا چاہیے.
ہریانہ سرسا سے اوم پرکاش چاولا فون لائن پر ہیں. اوم پرکاش جی.
ہاں جی ہاں جی, نمسکار جی. ہریانہ جی
جی,
ہاں بہت بہت آبھار آپ کا جی. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہ اکثر دیکھا گیا ٹی وی کے مریض میں پہلے تھوڑا نمونیا بگڑتا ہے اور اس کے بعد ٹی وی کے چانس تھوڑے اور بھی زیادہ, مطلب وہ ہو جاتے ہیں, کمپلیکیشن والے ہو جاتے ہیں, کیا یہ صحیح ہے بات؟
نہیں.
اور دوسرا یہ دیکھا گیا کہ بھرانتی یہ لوگوں میں پلی ہوئی ہے کہ کینسر کو تو چھوئے چھوت کرو سمجھ لیتے ہیں, اور ٹی وی کو ایک, یعنی مطلب کہتے ہیں یہ پرماتما کی کوئی ہے.
جی اوم پرکاش جی, آپ کی آواز نہیں آ رہی, جتنا پوچھا آپ نے اس کا جواب دے دیتے ہیں. دیکھیے ٹی بی انفیکشس ڈیزیز ہے اور کینسر اس سے الگ ہے, تو جو ٹی بی کا ہے پورا علاج ہو سکتا ہے.
یہ کہہ رہے تھے کہ لوگ جو ہیں ٹی بی کو سمجھ لیتے ہیں کہ بھگوان کی دین ہے.
نہیں دیکھیے بھگوان کی دین تو سبھی بیماریاں ہیں, پر یہ ٹی بی کی بیماری ایک سے دوسرے تک جا سکتی ہے اور اس کا پورا علاج سمبھو ہے. یہ ایسی بیماری نہیں ہے کہ جو لا علاج ہے, اس کا پورا علاج سمبھو ہے, اور اس کو جتنا آپ جلدی ڈائگنوز کریں گے اتنا جلدی پورا علاج کر پائیں گے اور یہ بگڑے گی نہیں بیماری
ان کا.
اور جو نمونیا ہے وہ ٹی بی میں نہیں بگڑتا. آپ کا جو ٹی بی سے جو ایونچوئل ڈائگنوسس ٹی بی ہوتا ہے وہ ایکچولی نمونیا ٹی بی کی وجہ سے ہوتا ہے. سو ٹی بی پریزنٹ ہی ایسے کرے گا, شروع میں چھوٹی سی ابنارملٹی دکھے گی اور وہ نمونیا میں کنورٹ ہو جائے گی اگر آپ اس کا علاج سمے پہ یا ڈائگنوسس سمے پہ نہیں کریں گے.
جو ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی مریض ہیں ان کے لیے کیا ہے؟
تو دیکھیے ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی جو ہے اگین وہ پورا کمپلیٹلی ٹریٹیبل ہے, اس میں ڈیلے نہیں کرنا ہے. تو پہلے ہوتی تھی ٹی بی, ایم ڈی آر ٹی بی کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی تھی وہ 18 مہینے 20 مہینے بھی چلتی تھی, پر اب ہم نے نیو ریسرچ کے حساب سے اور کنٹری میں بھی ریسرچ کری, ہم نے ٹیسٹ کرنے کے لیے نیا ریجیمن لے آئے ہیں جو 6 مہینے کا ٹریٹمنٹ ریجیمن ہے اور 4 گولی لینی ہے اس میں, جس کا مطلب بہت ہی اچھا ایکسپیرئنس آیا ہے اور کمپلیٹلی کیوریبل اور گڈ ریسپانس ٹو دی نیو ریجیمن از ویل.
ہریدوار اتراکھنڈ سے روی جوالیا ہمارے ساتھ ہیں. روی جی.
ہاں جی نمسکار جی. میم جی مکر سنکرانتی اور لوہڑی کے آپ کو ہاردک شبھ کامنا اور میم جی کو. میم یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ میں اپنے کاریہ کھیتر میں کاریہ کرتا ہوں تو ٹی وی مکت بھارت ہو, اس کے لیے میں کیا کیا سہیوگ دے سکتا ہوں میم جی؟ دھنیواد میم جی.
جی بہت آپ نے اچھی بات بولی, اگر یہی ہم سب بولنے لگے تو دیش کے ٹی وی کو تو ہم ترنت دوڑا دیں گے. تو یہ والی دھارنا جو ہے نا سب میں آئے, اسی لیے ہم نے یہ 100 دن کا ٹی وی ابھیان شروع کیا ہے کہ ٹی وی جیسی بیماری ہے, اس کو صرف ہم نے پہچاننا ہے, پہچاننے کے بعد اس سے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ڈائیگنوسس گورنمنٹ فری دے رہی ہے اور اسٹیٹ آف آر ٹیکنالوجی سے دے رہی ہے. بہت بڑا نیٹورک ہے کہ ہم پی ایچ سی آیوشمان آروگیہ مندر تک پہنچے ہوئے ہیں ڈائیگنوسس کرنے کے لیے, وہاں تک ہم نے پروویژن دیا ہوا ہے ہر چیز کا. بس مریض گھبرائے نہ, اگر وہ اسٹگما سے نہ ڈر کے گھر میں بیٹھے, وہ سامنے آئے اور اپنا ڈائیگنوسس کرائے, پورا علاج کرائے, اچھا پوشن لے, دوسروں کو سہایتا دے. तो ऐसे में तो देखिए टीबी तो भाग ही जाएगी।
अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइन्स के माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में उप महानिदेशक प्रोफेसर उर्वशी बी सिंह, आपका स्टूडियो में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात ठीक 9:30 बजे एक और मुद्दे पर चर्चा के लिए हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए कनकलता को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
नमस्कार।